शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा हमें रोज रोज नया वरदान देते हैं। कितने वरदानों से हम भरपूर हो जाते हैं, फिर रोज रोज हमें नया टाइटल भी देते हैं। जिस टाइटल को धारण कर हम हमारे अंदर नशा चढ़ता है। तो आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। तुम सब कौन हो? शांति दूत हो, तो शांति फैलाने वाले हो। तुम अशांति नहीं फैला सकते। अशांति कैसे होती है? क्रोध से। तो दुनिया में काम और क्रोध की अग्नि भड़की हुई है। हर एक के अंदर काम और क्रोध की अग्नि है। तो तुम उस अग्नि को बुझाने वाले हो। तो बाबा ने टाइटल दिया है, तुम सब फायर ब्रिगेड हो। सबके अंदर से काम क्रोध की अग्नि बुझाने वाले। फिर तुम रूहानी मिलिट्री भी हो। बाबा हमेशा कहते हैं रूहानी मिलिट्री हो, माया से तुम्हारी युद्ध है। सबकी काम क्रोध की अग्नि बुझाएंगे तो माया अपोज तो करेगी, विघ्न डालेगी, सामना करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी सेवा जारी रखनी है। तो रूहानी मिलिट्री हो, तो रूहानी मिलिट्री का कैसे पता चलता है? वो मिलिट्री का तो पता चल जाता है, मिलिट्री वाले उस अनुसार ड्रेस पहनते हैं, उस अनुसार उनके मेडल्स होते हैं, है ना, कई मेडल्स वो पहनते हैं, तो पता चलता है इसका क्या रैंक है आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में। तो हमारा भी क्या चिन्ह है? हमारा भी, हमारी भी तो वर्दी है ना, ये सफेद वस्त्र। आत्मा और शरीर दोनों को ही हम शुद्ध रखते हैं, और साथ साथ बैज भी है। तो बाबा कहते हैं बैज पहनने से कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी जाओ बैज जरूर लगाओ। और बैज से कितनी सर्विस होती है। तो रूहानी मिलिट्री हो तो तुमको बैज जरूर लगाना है। फिर उस बैज से सेवा बहुत हो सकती है। ट्रेन में बैठते हो तो आपस में बैज पर ही सेवा शुरू करो आपस में। तो लोग कहेंगे अच्छा ये क्या है बैज, पूछेंगे, तो उनसे फिर और सेवा हो जाती है। तो आज बाबा ने तीन टाइटल दिए हैं, रूहानी मिलिट्री हो, फायर ब्रिगेड हो, और तीसरा बहुत बड़ा टाइटल, तुम सारी दुनिया के मित्र हो। तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। तुम सबको सच्चा पैगाम दो। शांति दूत हो तो सबको कौन सा पैगाम दो कि विश्व में शांति कैसे हो? तो किसी, कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वहां तो दुश्मन से लड़ते ना, हमारा दुश्मन केवल एक ये माया ही है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 11/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? मिलिट्री वालों को तो बहुत डायरेक्शन मिलते हैं ना। तो तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। है सबको बैज? जिसने बैज नहीं पहना है हाथ उठाओ। है कोई बैज नहीं पहना है? हाँ, बैज नहीं है क्या? आजकल तो बहुत बैज मिलते हैं, तो जरूर कोई ना कोई बैज जरूर होना ही चाहिए। तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम कौन है, तो बोलो हम है सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है, क्रोध की भी अग्नि है, काम की भी अग्नि है, और वो अग्नि भी कितनी जलती रहती है। तो काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं कि अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सबको संदेश दो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। आज बाबा ने सहज शब्द क्यों कहा है? नहीं तो बाबा कहते तुम सब बच्चे याद में बैठे हो। आज बाबा कहते सहज याद। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। बाबा की याद में बैठते हैं तो बहुत मूंझते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, हम क्या टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे? टाइट, हाँ, एकदम जैसे कई होते हैं ना, बिल्कुल वह रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और एकदम सीधा बैठना है और ये पद्मासन लगा के बैठना है आदि आदि कई कहते हैं। तो कई तो बाबा से पूछते हैं, बाबा हम क्या टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे? बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है। अभी किसको कोई पीठ में दर्द हो तो कैसे वो ऐसे बैठ सकता है? परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे करके नींद करते रहना, ऐसे भी नहीं बैठना। स्टूडेंट कैसे बैठते हैं क्लास में? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठ के याद करो। बाप को सिर्फ याद करना है, सहज योग। इसको बाबा कहते सहज योग। इसमें मुश्किलात की तो कोई बात ही नहीं है। वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये है ही सहज याद, इतनी सहज है जो बैठकर भी करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट होके बैठने की भी बात नहीं, तो बैठकर भी जरूरत नहीं है। या तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में याद रहे। जैसे देखो, बाबा ने मिसाल दिया, कोई वहां बैठा होगा सभा में, तो पिता उस अपने बच्चे को लेकर के आया, वो बच्चा शांत है, तो उसको सभा में बिठा देता अपने साथ पिता। तो बाबा कहते देखो ये जैसे बच्चा है, हाँ, तो ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। अब पिता के साथ बैठा है, हाँ, तो बेटा लड़का है तो भाइयों की तरफ बैठा होगा पिता के साथ, और माँ तो बहनों की तरफ होगी, तो अब भाई पिता के साथ बैठा है। अब इनको तो बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, तो तुम भी बच्चे हो, तुम भी माँ बाप को याद करते हो। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वा अर्थ ग्रस्त व्यवहार में भी बल रहो। सिर्फ क्या करो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। रहो घर ग्रस्त में, परंतु बाबा को याद करो, और किसी को याद नहीं करो। कोई हनुमान को, कोई किसको, कोई साधु आदि को याद करते हैं, अब वो याद भी छोड़ देनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। याद तो करते हैं ना, पुजारी होगा तो पूजा के लिए उस पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, तो वो मूर्ति को भी याद करेगा, मंदिर को भी याद करेगा। तो बाबा कहते हैं तो उसको याद करना पड़ता है। अब इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है, कहाँ भी रहो आप बाबा को याद कर सकते हो। इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है, कोई भी मिले तो उनको बोलो, कोई भी मिले उनको बोलो, शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है ना, परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, ये तो सही महिमा है उनकी, वो पतित पावन है। लेकिन फिर क्या गलत है बाबा उसमें, क्या करेक्शन करते हैं, ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो किसमें फिर बाबा गलत कहते हैं, पतित पावन सीताराम, फिर कहेंगे रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम, बाबा ने कहा भगवान तो राजा बनता ही नहीं है, तो किस राम के लिए कहते हैं पतित पावन, क्या सीता वाले राम के लिए कहेंगे पतित पावन, तो कौन राम है। फिर श्री राम भी नहीं कहते, सीताराम सीताराम भी नहीं करते, पूजा करते हैं या मंत्र जाप कर तो भी राम 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 कहेंगे, श्री राम भी नहीं कहेंगे, सीताराम भी नहीं, तो वो राम कौन जिसका नाम जपते हैं। तो वैसे भी कहते हैं राम माना जो सबके दिल में रमता है, तो रमने वाला राम, तो वो तो निराकार हो गया। तो बाबा कहते हैं अब पतित पावन अक्षर तो राइट है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, अगर हम कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये कोई गलत बात थोड़ी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की भी महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब ये है मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, ये है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, पावन बनना है, विकर्म विनाश करने हैं तो केवल मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। पावन नहीं बने यहाँ फिर सजा खानी पड़ेगी तो कम पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, ये कहो सबको, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, इससे ही तुम्हारे पाप कटेंगे, नहीं तो हाँ कम पद पाएंगे। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ, इसको ज्ञान दो तो को मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ, मैं उनका संदेशी हूँ, मैं संदेशी हूँ, इस समझाने में कोई तकलीफ भी नहीं है, ज्ञान सुनाने में तकलीफ भी नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुबजाएं भी बहुत ऊंच पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, हालांकि यहाँ रहेंगे तो दुनिया की निगाहों से तो दूर है, लेकिन आजकल मीडिया ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया, कहाँ भी रहेंगे मन तो भटकता ही रहता है सारी दुनिया में, तो भले यहाँ भी रहे तो भी भटक सकता है, और कोई घर गृहस्थ में भी रहे तो भी बाबा की याद हो तो मन भटकेगा नहीं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में खुद कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है, हाँ हम जा रहे हैं इस छीछी दुनिया से तो थोड़े दिन है अभी यहाँ, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम भी कहते हो हाँ स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे, हाँ है ना, सभी यही कहते ना 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो किसके लिए, कहाँ जाने लिए, तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर भी जाना है, हाँ फिर नई दुनिया में आना है तो वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम। तो बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तो क्या करूँगा कालों का काल, वो काल भी आता है तो एक को ले जाता है ना, परंतु कालों का काल क्या करेगा, वो तो केवल एक को ले जाता है काल, लेकिन कालों का काल बाबा कहते हैं मैं सबको शरीरों से छुड़ा करके आत्माओं को ले जाऊंगा, सब अपना शरीर छोड़ेंगे, केवल एक नहीं, तो कालों का काल तो सबको ले जाएगा, तो सबको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी है ना हम जल्दी जाएं, जो बहुत दुखी होते हैं तो वो तो यही कहते बस भगवान उठा लो इस संसार से, हमको नहीं जीना। तो सब कहते भी हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का भी नहीं है, जल्दी जाना भी है, अभी बाप आए हैं ले जाने के लिए, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, और क्या कहते हैं सबको ले जाऊंगा, तो और क्या कहते हैं साथ में, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हाँ कोई कहे प्लीज मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, भगवान सुनेगा नहीं, सबको ले जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, तुम सब ने बुलाया ही है इसीलिए, हे पतित पावन आओ, भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, तो कितनी धुन लगाते हैं पतित पावन की, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनता नहीं है तो किसको याद करते हैं, शिव बाबा तो राजा बनता नहीं है, राजा ही तो करता नहीं है शिव बाबा, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया, शिव बाबा को राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम ही कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है, भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम तो बहुत रख दिए हैं, अब श्री कृष्ण के भी कितने नाम रख दिए, जैसे शिव बाबा के सहस्त्र नाम है श्री कृष्ण के भी बहुत नाम रख दिए, तो बाबा ने कुछ नाम गिनाए श्याम सुंदर वैकुंठ नाथ मक्खन चोर, ये श्री कृष्ण का नाम देते हैं, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? हाँ, जो समझते मक्खन चोर है वो हाथ उठाए। अच्छा, हाँ, कौन सा मक्खन चुराते हैं? सारी दुनिया का मक्खन, वो मक्खन नहीं चुराते। क्या कमी होगी श्री कृष्ण को वैकुंठ में जो मक्खन चुराएगा, दूसरों के गोपियों के घरों में जाकर के मक्खन चोरी करेगा? तो बाबा कहते तुम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे मक्खन चोर। हाँ, वहाँ कोई चोरी होती नहीं है स्वर्ग में, बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते भगवान, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो बहुत बड़ी बात है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य कैसे अपने को भगवान कहलाते हैं? तो मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं लक्ष्मी नारायण। हाँ, वैकुंठ के मालिक है लक्ष्मी, उनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो बाबा कहते शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं, जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। कोई भी ऐसे तो नहीं विश्व का मालिक बन सकता, कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा तभी तो विश्व का मालिक बना या वैकुंठ का मालिक बना। उसको कहा जाता है हाँ, वो कब पुरुषार्थ किया और किसने पुरुषार्थ कराया और क्या पुरुषार्थ किया, अगर किससे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कैसे ये बने, क्या पुरुषार्थ किया, कब किया, किसने कराया, कोई नहीं बता सकेगा। पर बाबा कहते हैं कब कराया, उसको कहा जाता है कलयुग अंत और सत्युग आदि का संगम युग। कल बाबा ने कहा सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर के हमें पुरुषार्थ कराते हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। अब ये है कल्प का संगम युग, मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूलकर फिर, हाँ पहले तो चलो कहते अवतार, फिर कहते युगे युगे, तो युग तो चार ही हो गए, चलो पांचवा युग तो पांच ही हो गए, तो फिर कह दिया कि युगे युगे, चलो बना हो गया, फिर कहेंगे 84 लाख योनिया, फिर क्या कहते हैं 84 लाख, तो 84 लाख माना, फिर कहेंगे चलो ये अवतार 24 अवतार कहते हैं, तो 24 अवतार भी चलो मान लो, माना एक एक युग में 6 अवतार हो गए ना 24, फिर क्या कह देते हैं अवतार नाम भी भूलकर फिर उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। अब ठिक्कर भीतर कण कण, तो बताओ कितने ही अवतार हो गए। तो अवतार नाम भी भूलकर फिर उनको ठिक्कर भीतर में कण कण में कह दिया है। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा है, ऐसे कहे तब तो भगवान से बेमुख हो जाए ना, तो इसीलिए कह दिया है ड्रामा अनुसार, क्योंकि बेमुख होना ही है। ये भी है ड्रामा, जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। अब बाबा ने इस ड्रामा को किस रूप में देखा है, याद किया है, तो पास्ट हो गई बात, परंतु हम कई बार क्या करते उसको रिपीट करते थे, तुमने ये 10 साल पहले कहा था ये किया था, अभी 10 साल पहले 20 साल पहले हम उसको याद करते रहते, हाँ पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूलना है, अब 10 साल पहले 20 साल पहले ये सब क्यों याद करना, हमको तो बाबा को याद करना है ना, लेकिन उस 10 साल 20 साल पहले वाली बात याद करके लड़ना चालू कर देते। तो बाबा कहते देखो बाबा ने ड्रामा को कैसे याद किया, जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ पास हुआ, उनका चिंतन भी नहीं करना है, बोलना तो क्या, चिंतन भी नहीं करना है, बात हो गई खत्म फुल स्टॉप, पर चिंतन तो क्या, बोलते रहते हैं, सबको सुनाते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ड्रामा याद नहीं है ना उनको। तो कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन भी नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, किसने कुछ उसको कुछ कहा, अभी कम जास्ती बोला, मना ठीक नहीं बोला, चलो तुम उनको भूल जाओ। पर भूलना भी नहीं है, वो रिपीट करते रहना है और उसको सुनाते रहना है, तुमने मुझे ऐसे कहा, फिर सबको सुनाते रहना, इसने मुझे ऐसे कहा। तो बाबा कहते माना इसको ड्रामा याद नहीं है, बिंदु नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी तो ऐसे बोला था ना, अब फिर से रिपीट करते रहेंगे तो फिर वो नूंद हो जाएगा अगले कल्प के लिए भी, और भूल गए तो फिर आगे का तो रिपीट नहीं होगा ना। तो कल्प पहले भी ऐसे ऐसे बोला था, वो बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, और वो सामने जैसे आएगा, इसने मुझे ये कहा था, अब तुम किसको कहा, तुम मूर्ख हो, अब वो भूलेगा ही नहीं कि इसको इसने मुझे मूर्ख कहा है, हाँ इसने मुझे ये कहा है, जैसे सामने आएगा इसने मुझे मूर्ख कहा है, इसने मूर्ख कहा है तो ये महामूर्ख है। अब महामूर्ख अगर उसको कहा, माना मैं मूर्ख स्वीकार किया ना कि मैं मूर्ख हूं, तब महामूर्ख कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा समझ कर भूल जाओ। तो ये बात, वो बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं, कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अभी ये बात बाबा क्यों कहते हैं, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सर्विस करते हैं आपस में कुछ बनती नहीं है, तो एक दो से बिगड़ पड़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं, फिर सेवा से भी रूठ जाते हैं, बाबा से भी रूठ जाते हैं। तो देखो बाबा ने सावधान किया है, तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, रूठ जाना, गुस्सा करना, हाँ मनमानी करना, तो बाबा कहते ये तो फिर कमजोरी हो गई ना, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए। बाबा जो सेवा देवे, जो भी मिले सेवा, उसमें ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बड़ों ने जो सेवा दी उसमें ना किया, माना पद भ्रष्ट हो गया। बाप की सर्विस करने में जरा भी पद भ्रष्ट कर देंगे, बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है, पूरी मदद देनी है, जो भी बाबा कहे। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, ना भी नहीं करनी है, धोखा भी नहीं देना है। आप बाप कहो हाँ मैं आऊंगा सेवा के लिए, और आओ ही नहीं, फिर बताओ भी नहीं कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो ये तो धोखा हो गया ना, जिसके भरोसे हम बैठे थे ये आएगा और आया नहीं, तो धोखा हो गया। तो जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम भी ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना। म्यूजियम का नाम कई सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, हमारा भी जो ये म्यूजियम बना माउंट आबू में, उस पर भी ऊपर से लिखा है गेटवे टू हेवन। तो आते कहते गेटवे टू हेवन क्या है भाई, गेटवे टू हेवन जरा देखे तो सही, तो अंदर आते हैं बाहर नाम पढ़ करके। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे नाम रखो जो आकर्षित हो लोग और आए देखने। तो बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना, मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं बाहर का प्राचीन योग सीखने, आते ना भारत में विदेशी आते हैं, समझते हैं भारत का योग मशहूर है, सबसे प्राचीन है, हम भारत में योग सीखने जाएं। तो बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने, अब प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना, प्राचीन किसको कहेंगे, पुराने से पुराना। अब वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ राजयोग है, पुराने से पुराना भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है जो 5000 साल पहले सिखाया था। बाकी जो भी सिखाने वाले वो तो सब द्वापर के बाद ही आए होंगे, पर 5000 साल पहले तो भगवान ने सबसे पहले राजयोग सिखाया। जिसको 5000 वर्ष हुए, सतयुग त्रेता में तो योग होता ही नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है, न हठ योग सिखाने वाला न राजयोग सिखाने वाला, कोई योग होता ही नहीं है। जिसने सिखाया वो तो चला गया, शिव बाबा ने 5000 साल पहले सिखाया वो तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष के बाद आए तभी आकर के राजयोग सिखाए, तो प्राचीन किसको कहेंगे, सबसे प्राचीन कब होता है, किसको कहेंगे प्राचीन, अर्थात 5000 वर्ष पहले वाला वो सबसे प्राचीन, उससे प्राचीन कुछ होता नहीं है 5000 साल से। तो प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था राजयोग, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम पावन बन जाते हो। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, सब पतित है, सब तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, अभी भी देखो पंजाब में क्या हालत लगी पड़ी है, कितने गांव डूब गए, कितनी फसल नष्ट हो गई, कितने लोग मरे होंगे, यहाँ बह गए। तो कहते हैं कि इतनी गैया भैंसे या जो भी सब बह गई, अब बह गई कितनी बह गई। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में सतयुग में पुरानी दुनिया में कितने उपद्रव होते रहते हैं, सतयुग में तो उपद्रव की तो बात ही नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, सेवा करती है देवताओं की प्रकृति, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, और यहां प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। देखो कैसी बन गई है प्रकृति, दुश्मन बन करके दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की तो बात ही नहीं थी, सतयुग था, अभी फिर वो स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखला रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखलाएंगे, जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद के बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा नहीं सकता, वही बजाएंगे अपना पाठ। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ अपना स्थापना का पाठ पूरा कर। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी, पुरानी दुनिया नहीं थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था जब तब। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो, रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। थोड़ी अनबन हुई किसी से तो रूठ गया और सर्विस ही छोड़ दी। बाबा कहते हैं रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। ये है कौन सी सर्विस पर है हम, ये है ईश्वरीय सर्विस, गॉडली सर्विस, तो इसमें धोखा नहीं देना है। यह है ईश्वरीय सर्विस, माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, अब बाबा कहे वहां जाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, बड़े कहे जाओ, नहीं जाऊंगी, तो ये तो बाबा कहते ये भी धोखा दिया ना, बड़े कई और आज्ञाकारी नहीं है तो दुखा हुआ। तो बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, मित्र संबंधी आदि जो भी आए सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। सबकी सेवा करनी है, सब धर्म वालों की भी सेवा करनी है, तो सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो। क्योंकि क्यों हम सारी दुनिया के मित्र हैं? क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। अब बाबा ने यही कहा है, सबकी सेवा करो, तो हम किसकी करे किसकी न करे ऐसे तो नहीं है, तो सबके सबकी सेवा करते क्योंकि हम बाप के मददगार हैं। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, सबके मित्र हैं हम, मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो। अब शिव बाबा को याद करो, कोई पुरानी पुरानी बातें कोई निकाले किसका मन खराब करे तो क्या कहेंगे? बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्री मत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो वहां भी सब फ्री रहे, फ्री बैठे हैं, उनको कुछ उस समय तो कोई काम नहीं होता है तो फ्री है, तो बाप सब फ्री है तो सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है। अब कैसे बैच पर सर्विस कर सकते हैं ट्रेन में भी? बैच तो बहुत अच्छी सर्विस है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो अब आप कौन हो। हाँ, तो सब बैज लगाकर सफेद सफेद वस्त्रधारी आते ना बाबा। अब जब बाबा के बच्चे आते ट्रेन में, कई बार तो पूरा ही कोच बाबा के बच्चों के सका होता है, पूरा ही कोच। कोई ऐसे दूसरा आ गया तो कहता अरे ये तो सब वस्त्र सफेद वस्त्रधारी है, बहुत सेवा होती है फिर उनकी। कोई पूछे आप कौन हो, कौन हो तो बोलो हम है फायर ब्रिगेड। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो क्या होगा? हाँ, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बैज श्रीमत से ही तो बने हैं, श्रीमत अनुसार ये बैज बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं, करते हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं, और कोई उनके पास चीज नहीं है, केवल बैज पर करते हैं। कोई कोई नहीं करते हैं, केवल बैच पर, बैच पर भी सर्विस कर सकते हैं। बहुत थोड़े बच्चे जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, ये है बाबा। बैच पर क्या समझाओ, ये है शिव बाबा ज्योति बिंदु, इनको हम याद करते हैं और तुमको भी इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते हैं, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है। अभी शिव बाबा का बैच तो सबको होगा, चलो टीचर्स को ये लक्ष्मी नारायण का मिलता है, समर्पित को श्री कृष्ण का मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ तो त्रिमूर्ति है ही है, उसमें भी शिव बाबा तो है ही है। तो बाबा कहते सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। हाँ बाबा कितना सहज करके बताते हैं। तो क्या याद के बल से पाप कट जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आ जाएंगे, है ना? बहुत सहज है ना ये बातें। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये, लिटरेचर भी दे सकते हो बोलो। हाँ, अगर किसको किताब देते हैं ना तो कई तो जरूर पूछते हैं कितने का है, तो बाबा कहते हैं उनको बोलो तुम गरीब हो तो फ्री हम दे सकते हैं, फ्री ले लो। साहूकारों को तो पैसा देना चाहिए, ताकि हम और लिटरेचर छपा करके हम औरों को बांटें। साहूकारों को तो पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं। ये चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये जो किताबें हम दे रहे हैं, इससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है ना, कोई भी धर्म वाला हो, बोलो। हाँ, क्या बोलो? कोई भी धर्म वाला हो, बोलो, वास्तव में तुम तो आत्मा हो। अब ये तो सबको कह सकते हैं ना, किसी भी धर्म वाला है तो सारी आत्माएं, किसी भी धर्म वाला वो भी तो आत्मा ही है। बोलो, तुम तो आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अविनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है, ये भी बताओ। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे, बोलो। हाँ, फिर और क्या बोलो? ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। हाँ, ये केवल एक किताब नहीं है, पर करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते ही नहीं है। देखो बाबा का डायरेक्शन है, कहीं भी जाओ बैज जरूर लगा हुआ हो, अगर नहीं लगाते बैज तो ये भी बाबा की डायरेक्शन का उल्लंघन है। परंतु बैज लगाते नहीं, लजाती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहां ऑफिस आदि में अकेली जाती है तो ये बैज जरूर लगाना चाहिए। सब टीचर्स को बैज है? टीचर हाथ उठाओ सभी, सबको बैज है? बैज लगा के आए हैं सब टीचर्स जी? हाँ, तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे, हाँ, जिसको भी तुम इन पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। फिर कई कहते हैं ये बैज हमको दो, ऐसे भी कह देते हैं। तो बाबा तो बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जान सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझाते हैं, शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। तो हाँ, लज्जा नहीं करनी है, अभी तो और ही खुश होते हैं, देखते हैं ब्रह्मा कुमारी बैज लगा हुआ है तो खुशी से कई बातें पूछते हैं। बाबा कहते हैं, एक तो बैज हो, दूसरा सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला झाड़ का भी चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे ट्रेन में, पूछेंगे ये क्या है। बोलो, शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा इनके यानी ब्रह्मा द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे, तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे। परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को ये बिल्ला, हाँ, बिल्ला होता है बैज, तो ये बिल्ला लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? मिलिट्री वाले अपना बैज लगा कर चलते हैं, उनको लज्जा आती है क्या? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई न कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, पूछेंगे तो बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर के सर्विस कर सकते हैं। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो, ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। शिव बाबा की दुकानें सब बच्चों द्वारा बाबा चला रहे हैं, हम तो बस खाली मैनेजर है ना, मालिक तो नहीं है, मालिक तो बाबा है, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपना अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है, कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेजर, शांति के दूत हो, कहां भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। कहां भी रहो अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। हाँ, दूत माना मैसेंजर, संदेशवाहक, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांति स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वो अशांति दे, आप शांति दो। वो आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। इसलिए बाबा ड्रिल कराते, एक सेकंड में हाँ चले जाओ परम धाम, एकदम साइलेंस हो जाएगी ना। जैसे आवाज में आना सहज लगता है वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है और जैसा कि आपको मालूम है कि श्राद्ध भी आरंभ हो चुके हैं। कल भी आप सबको बताया था कि आज सतगुरुवार के दिन पितरों का भी भोग स्वीकार कराया जाएगा और पितरों के लिए सबको वतन में जाना है, क्योंकि पितर ही सबके लिए इष्ट के समान होते हैं, सम्माननीय होते हैं। हर एक के मन में यही भावना रहती है कि हम अपने पूर्वजों का आदर सत्कार कैसे करें। तो आज का दिन है, हम सब वतन में जाएंगे और खास करके एडवांस पार्टी के जो भी यज्ञ के निमित्त हैं उनको भी सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे और साथ साथ हर एक यही संकल्प करेगा पितरों को भी हम अपनी शुभकामनाएं और उन्हें भी भोग स्वीकार कराएंगे। तो आज वतन में कौन जाएगा? जो जाएंगे हाथ खड़ा करो, क्योंकि जाना मीन्स अपने बड़ों का सम्मान करना है। बाबा भी यही चाहते हैं कि केवल एक नहीं अनेक बाबा के बच्चे वहां बाबा के सामने उपस्थित हों। बाबा के टाइम पर भी जब भोग स्वीकार कराते थे तो सब भाई बहने बैठते थे। जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं उस समय भी सभी भाई बहने प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो हर गुरुवार के दिन हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि हम बाबा के पास जा रहे हैं, वतन में जा रहे हैं, बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। तो आज बाबा को भी भोग स्वीकार कराएंगे, साथ साथ एडवांस पार्टी और साथ साथ पितरों को भी हम भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी और 2 लाइनें भट्टी की, 1 लाइन में भट्टी की टीचर्स बहने और माताएं और दूसरी लाइन में भट्टी की बहने होंगी और बाकी 2 लाइनें माताओं की होगी जो कि बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और लाइन 5 लाइन में अमृत पिलाने के लिए कविता बहन स्टेज पर आएगी, कविता बहन भरतपुर वाली स्टेज पर आएगी और बाकी तो अपने जो हैं वो पिलाते हैं। और ये इसका नाम क्या है, बिंदु बहन और मंजू बहन, त्रिवेणी बहन, बिन्नी बहन जैसे पिलाते हैं वो भी स्टेज पर आएंगे और कविता बहन भी स्टेज पर आकर के अमृत पिलाएगी। और अभी हम फिर से बाबा को याद करते हुए बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे, उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। अभी हम सब चलते हैं वतन की ओर। ओम शांति।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें प्यारे बाबा तथा पितरों के निमित्त लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नजारा आज एक बहुत अव्यक्त रूप में दिखाई दे रहा था। चारों ही तरफ सफेद सफेद लाइट और चारों ही तरफ सफेद सुंदर सी डेकोरेशन थी और वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी कि जैसे कि कोई फरिश्ता लोक या कोई चारों ही तरफ सूक्ष्म वतन के अंदर भी न्यारी शोभा दिखाई दे रही थी। और फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे व्यंजन के थालियां रखी हुई थी और बहुत मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए मैं उन सब व्यंजनों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आए, कहा आओ बच्ची आज क्या देख रही हो। मैंने कहा बाबा ये दृश्य तो बहुत न्यारा और मन को लुभावने वाला है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज के दिन बाबा ने अपने अनन्य रत्न एडवांस पार्टी के और जो यज्ञ की सेवाओं में ऐसे रत्न जिन्होंने बहुत तन मन से धन से सेवाएं की हैं और स्नेही सहयोगी और भगत जो जाने अनजाने भगवान को याद करते रहते हैं, जिनके निमित्त सबने अपनी भावनाएं भेजी हैं, तो उनको खास बाबा ने वतन में निमंत्रण दिया है। तो जब तक बाबा कहें उससे पहले बाबा ने कहा कि सब बच्चे वतन में आओ, तो ढेर ब्राह्मण के ब्राह्मण वतन में पहुंचे। तो मैंने कहा कि बाबा ये तो सब ब्राह्मण आ गए हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को एक विशेष जिम्मेवारी दी हुई है कि सबका कल्याण करना, दाता बनकर देते रहना और हर एक आत्मा को भरपूर करना। तो आज सभी ब्राह्मण बच्चे इन सभी ईष्ट को पूर्वजों को ऐसा भरपूर करेंगे, बाबा भी बच्चों के साथ देखेंगे। तो पहले पहले इतना बड़ा पंडाल दिखाया जिसमें बहुत से लोग थे और वो बिल्कुल शांति से लाइन में बैठे हुए हैं और जैसे परमात्मा को हाथ जोड़ करके कुछ आश लेकर के लगता था कि उनको कुछ भगवान दे रहा है। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को बोला कि आप जाओ और इन सब की आशाओं को पूर्ण करो। तो सब बाबा के बच्चे उन सब के पास ऐसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर के जाते हैं और जैसे उनको मिलता है तो उसके साथ उनको एक लाइट भी दिखाई देती है। व्यंजन तो लिया लेकिन वो परमात्मा के गुणगान करते हैं। कई ऐसे थे जिन्होंने भगवान को कम याद किया था, कई ऐसे थे पुकारते थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि आज तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। फिर बाबा जैसे उनको लाइट के द्वारा ऐसी किरण पहुंच रही थी, हरि को अपने ईष्ट भगवान का दर्शन हो रहा था। फिर दूसरी तरफ बाबा ने बच्चों को भेजा जहां पर जो यज्ञ के स्नेही और सहयोगी थे, उनके लिए जो पंडाल बना हुआ था वो अलग प्रकार से था। उस पंडाल के अंदर सफेद फूलों से डेकोरेशन थी और उन सफेद फूलों की महक जो थी इतनी प्यारी सी थी, तो बाबा ने कहा कि इनको भी आज के दिन भोजन स्वीकार कराओ। तो जैसे बाबा के साथ बच्चे उनको भोजन स्वीकार कराने लगे तो उनके पास हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंचता था और वरदान में लिखा हुआ था कि श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मीठा होता है। तो बाबा ने कहा इन बच्चों ने कई कार्यों के अंदर अपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म का फल बच्चों को आज नहीं तो कल उनको मिलता ही है। फिर उनको बाबा ने क्या किया, ऐसा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से उनके पास एक ऐसी कोई जादू की जैसी कोई चीज होती है ना, वो ऐसे पहुंचा गोल सा, उसको हाथ लगाते थे और जैसे कोई शुभ संकल्प करता था तो उस शुभ संकल्प से उनके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती थी। तो बाबा ने कहा कि जाने अनजाने में भी कोई शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म का फल जो है उसको ऐसे प्राप्त होता है जैसे सोता ही कुछ मिल रहा है। फिर तीसरी तरफ बाबा ने जो पंडाल दिखाया, उस पंडाल में सफेद फूल भी थे लेकिन सफेद फूलों के साथ साथ गुलाब के फूल बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल थे और गुलाब के फूल के साथ साथ ऊपर से सूरजमुखी फूलों की भी डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि देखो ये वो बच्चे हैं यज्ञ की अनेक सेवाओं में जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता और गुलाब के फूल की तरह से ऐसी महक फैलाते हुए और सूर्यमुखी फूल की तरह बाबा, मेरा तो एक बाबा, बाबा को साथी बना करके चलते रहे, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने खुद अपने हाथ से भोग स्वीकार कराना शुरू किया और साथ में सभी बाबा के बच्चे भी उनको भोग व्यंजन परोस रहे थे। तो बार बार बाबा को देख रहे थे, बाबा को कहते बाबा आपने तो हमें इस संगम युग के अंदर भरपूर कर दिया है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा यज्ञ की अनेक सेवाओं में बच्चों का जो योगदान रहा है उसके कारण बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। तो जैसे बाबा ने कहा भाग्यशाली हैं, तो हर एक के गले में एक सुंदर सी माला पड़ती थी और माला के अंदर एक डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता था। बाबा ने कहा संगम युग के अंदर पुरानी दुनिया में रहते हुए एक डायमंड की तरह बच्चों ने सेवा की और बाप के साथ के अनुभव किए और फिर बाबा ने उनको एक कमल पुष्प दिया। उस कमल पुष्प में बहुत सी सुंदर लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा ये बच्चे कमल फूल समान रहे। फिर क्या देखती, एक बहुत बड़ा पंडाल ऊपर की ओर था और उसमें यज्ञ के जो आधार मुहूर्त हैं एडवांस पार्टी के, जैसे दादियाँ मम्मा बाबा सब के सब एडवांस पार्टी के दादी और दादाएं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तो देवताओं के रूप में सजे हुए, ईष्ट के रूप में सजे हुए थे। बाबा ने कहा ये पूरे कलम के अंदर ऐसे महान सौभाग्यशाली जो विश्व के सामने एक ईष्ट के रूप में है और उनसे जो लाइट निकल रही थी बहुत दूर दूर तक भक्तों के पास पहुंच रही थी। बाबा ने कहा आज भी भगत उनका गायन पूजन और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्होंने सबके लिए इतना किया, त्याग तपस्या और योग के बल से सबको भरपूर किया। तो बाबा उनको सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा ने खुद अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया और वो भी सभी बाबा को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराने लगे। तो बाबा ने क्या किया, उनके सामने हर एक के सामने एक थाली के अंदर बहुत सारे वरदान डायमंड के रूप में रखे हुए थे, वो सब उठा करके ऐसे दाता बन करके दे रहे थे। तो बाबा ने कहा यही बच्चे दाता वरदाता बाप का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, इन बच्चों ने साकार किया है और बाबा उनको ईष्ट के रूप में सारे विश्व के सामने दिखाई दिला रहे थे। बाबा ने कहा आज के दिन पितरों के साथ साथ ऐसे जो ईष्ट हैं उनसे भी भगत लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा ने कहा बच्चे भी कल्याणकारी वरदानी, बाबा ने पहले टाइटल दिया हुआ है और विश्व का कल्याण करना ये बाप ने बच्चों को पहले से ही जिम्मेवारी दी हुई है। फिर सबको याद दिया और मैं वापिस आ ओम शांति।